बोलती कहानियां
रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। मित्रों, आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी कुत्सा, स्वर अनुराग शर्मा का। अपने घर में आदमी बादशाह को भी गाली देता है। एक दिन मैं अपने दो तीन मित्रों के साथ बैठा हुआ एक राष्ट्रीय संस्था के व्यक्तियों की आलोचना कर रहा था। हमारे विचार में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को स्वार्थ और लोभ से ऊपर होना चाहिए। ऊंचा और पवित्र आदर्श सामने रखकर ही राष्ट्र की सच्ची सेवा की जा सकती है। कई व्यक्तियों के आचरण ने हमें क्षुब्ध कर दिया था और हम इस समय बैठे हुए अपने दिल का गुबार निकाल रहे थे। संभव था उस परिस्थिति में पड़कर हम भी गिर जाते, लेकिन उस वक्त तो हम विचारक के स्थान पर बैठे हुए थे और विचारक उदार बनने लगे तो न्याय कौन करेगा। विचारक को ये भूल जाने में विलंब नहीं होता कि उसमें भी कमजोरियां हैं। उसमें और अभियुक्त में केवल इतना ही अंतर है कि विचारक महाशय उस परिस्थिति में पड़े ही नहीं, या पड़कर भी अपनी चतुराई से बेदाग निकल गए। पद्मा देवी ने कहा, महाशय का काम तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन अगर हिसाब से देखा जाए तो उनके जिम्मे 1,000 से कम ना निकलेगा। उर्मिला देवी बोली, खैर का को तो क्षमा किया जा सकता है, उसके बाल बच्चे हैं, आखिर उनका पालन पोषण कैसे करे। जब वो 2400 घंटे सेवा कार्य में ही लगा रहता है तो उसे कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। उस योग्यता का आदमी 500 रुपए वेतन पर भी ना मिलेगा। अगर इस साल भर में उसने 1,000 खर्च कर डाला तो बहुत नहीं है, लेकिन महाशय खा तो बिल्कुल निहंग है। जोरू न जाता, अल्लाह मियाँ से नाता, पर उनके जिम्मे भी 1,000 से कम ना होंगे। किसी को क्या अधिकार है कि वह गरीबों का धन मोटर की सवारी और यार दोस्तों की दावत में उड़ा दे। श्यामा देवी उद्दंड होकर बोली, महाशय गा को इसका जवाब देना पड़ेगा भाई साहब, यूं बचकर नहीं निकल सकते। हम लोग भिक्षा मांग मांग कर पैसे लाते हैं, इसलिए कि यार दोस्तों की दावतें हों, शराबें उड़ाई जाएं और मुजरे देखे जाएं। रोज सिनेमा की सैर होती है, गरीबों का धन यूं उड़ाने के लिए नहीं है। यहां पाई पाई का लेखा समझना पड़ेगा। मैं भरी सभा में रगे दूंगी, उन्हें जहां 500 वेतन मिलता हो वहां चले जाएं, राष्ट्र के सेवक बहुतेरे मिल जाएंगे। मैं भी एक बार इसी संस्था का मंत्री रह चुका हूं, मुझे गर्व है कि मेरे ऊपर कभी किसी ने इस तरह का आक्षेप नहीं किया। पर न जाने क्यों लोग मेरे मंत्रित्व से संतुष्ट नहीं थे। लोगों का ख्याल था कि मैं समय बहुत कम देता हूं और मेरे समय में संस्था ने कोई गौरव बढ़ाने वाला कार्य किया ही नहीं। इसीलिए मैंने रूठकर इस्तीफा दे दिया था। मैं उसी पद से बेलौस रहकर भी निकाला गया। महाशय गा हजारों हड़प करके भी उसी पद पर जमे हुए हैं, क्या यह मेरे उनसे कुनह रखने की काफी वजह न थी। मैं चतुर खिलाड़ी की भांति खुद तो कुछ न करना चाहता था, किंतु पर्दे की आड़ से रस्सी खींचता रहता था। मैंने रद्दा जमाया, देवी जी आप अन्याय कर रही हैं, महाशय गा से ज्यादा दिलेर। उर्मिला ने मेरी बात काटकर कहा, मैं ऐसे आदमी को दिलेर नहीं कहती जो छिपकर जनता के रुपए से शराब पिए। शराब की जिन दुकानों पर हम धरना देने जाते थे उन्हीं दुकानों से उसके लिए शराब आती थी। इससे बढ़कर बेवफाई और क्या हो सकती है। मैं ऐसे आदमी को देशद्रोही कहती हूं। मैंने और खींची, लेकिन ये तो तुम भी मानती हो कि महाशय गा केवल अपने प्रभाव से हजारों रुपए चंदा वसूल कर लाते हैं। फिलायती कपड़ों को रोकने का उन्हें जितना श्रेय दिया जाए वो थोड़ा है। उर्मिला देवी कम मानने वाली थी, बोली, उन्हें चंदे संस्था के नाम पर मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से एक ढेला भी ले आए तो कहूं। रहा विलायती कपड़ा, जनता नामों को पूछती है और महाशय की तारीफें हो रही हैं। पर सच पूछिए तो ये श्रेय हमें मिलना चाहिए, वे तो कभी किसी दुकान पे गए ही नहीं। आज सारे शहर में इस बात की चर्चा हो रही है, जहां चंदा मांगने जाओ वहीं लोग यही आक्षेप लगाने लगते हैं, किस किस का मुंह बंद कीजिएगा। आप बनते तो हैं जाति के सेवक, लेकिन आचरण ऐसा कि शोहदों का भी ना होगा। देश का उद्धार ऐसे विलासियों के हाथों नहीं हो सकता, उसके लिए त्याग करना चाहिए। यही आलोचनाएं चल रही थीं कि एक दूसरी देवी आई, भगवती। बेचारी चंदा मांगने गई थी, थकी मांदी चली आ रही थी। यहां जो पंचायत देखी तो उसमें रम गई। उनके साथ उनकी बालिका भी थी, उम्र कोई 10 साल की होगी। इन कामों में बराबर माँ के साथ रहती थी। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। घर की कुंजी भी भगवती देवी के पास थी। उनके पतिदेव दफ्तर से आ गए होंगे, घर का खुलना भी जरूरी था, इसलिए मैंने बालिका को उसके घर पहुंचाने की सेवा स्वीकार कर ली। कुछ दूर चलकर बालिका ने कहा, आपको मालूम है महाशय गा शराब पीते हैं। मैं इस आक्षेप का समर्थन न कर सका। भोली भाली बालिका के हृदय में कटुता, द्वेष और प्रपंच का विष बोना मेरी ईर्ष्यालु प्रकृति को भी रुचिकर न जान पड़ा। जहां कोमलता और सारल्य, विश्वास और माधुर्य का राज्य होना चाहिए, वहां कुत्सा और शुद्रता का मर्यादित होना कौन पसंद करेगा? देवता के गले में कांटों की माला कौन पहनाएगा? मैंने पूछा, तुमसे किसने कहा कि महाशय गा शराब पीते हैं? अरे वाह, वे तो पीते ही हैं, आप क्या जाने? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सारे शहर के लोग कह रहे हैं। शहर वाले झूठ बोल रहे हैं बेटा। बालिका ने मेरी ओर अविश्वास की आंखों से देखा। शायद वो समझी मैं भी महाशय गा के ही भाई बंदों में हूं। क्या आप कह सकते हैं महाशय गा शराब नहीं पीते? हां, वे कभी शराब नहीं पीते। और महाशय गा ने जनता के रुपए भी नहीं उड़ाए? वह भी असत्य है। और महाशय खा मोटर पर हवा खाने नहीं जाते? मोटर पर हवा खाना अपराध नहीं है बेटा। अपराध नहीं है राजाओं के लिए, रईसों के लिए, अफसरों के लिए, जो जनता का खून चूसते हैं। देशभक्ति का दम भरने वालों के लिए यह बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन यह तो सोचो, इन लोगों को कितना दौड़ना पड़ता है। पैदल कहां तक दौड़ेंगे? पैरगाड़ी पर तो चल सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग शान दिखाना चाहते हैं, जिससे लोग समझें कि ये भी बहुत बड़े आदमी हैं। हमारी संस्था गरीबों की संस्था है। यहां मोटर पर उसी वक्त बैठना चाहिए जब और किसी तरह काम चल ही ना सके, और शराबियों के लिए तो यहां स्थान ही ना होना चाहिए। आप तो चंदा मांगने जाते नहीं, हमें कितना लज्जित होना पड़ता है, आपको क्या मालूम? मैंने गंभीर होकर कहा, तुम्हें लोगों से कह देना चाहिए कि ये सरासर गलत बात है। हम और आप इस संस्था के शुभचिंतक हैं, हमें अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करना उचित नहीं। हमें तो यह देखना चाहिए कि वे हमारी कितनी सेवा करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि गा खा और गा में बुराइयां नहीं हैं। संसार में ऐसा कौन है जिसमें बुराइयां ना हो? लेकिन बुराइयों के मुकाबले उनमें गुण भी बहुत हैं, यह तो देखिए। हम सभी स्वार्थ पर जान देते हैं, मकान बनाते हैं, जायदाद खरीदते हैं, और कुछ नहीं तो आराम से घर में सोते हैं। ये बेचारे तो 24 घंटे देश हित की फिक्र में डूबे रहते हैं। ये तीनों ही साल साल भर की सजा काटकर लौटे हैं। तीनों ही के उद्योग से अस्पताल और पुस्तकालय खुले। इन्हीं वीरों ने आंदोलन करके किसानों का लगान कम कराया। अगर इन्हें शराब पीना और धन कमाना होता तो इस क्षेत्र में आते ही क्यों? बालिका ने विचार पूर्वक दृष्टि से मुझे देखा, फिर बोली, ये बताइए महाशय गा शराब पीते हैं या नहीं? मैंने निश्चय पूर्वक कहा, नहीं, जो ये कहता है वो झूठ बोलता है। भगवती देवी का मकान आ गया, बालिका चली गई। मैं आज झूठ बोलकर जितना प्रसन्न था उतना कभी सच बोलकर भी ना हुआ था। मैंने बालिका के निर्मल हृदय को कुत्सा के पंख में गिरने से बचा लिया था। धन्यवाद।
Radio Playback India.